ओम शांति। यज्ञ रक्षक आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजू भाई सब आज हम सबके बीच में स्पेशल क्लास मन जीते जगत जीत इस विषय पर हम सबकी क्लास कराने पधारे हैं। हम सब भाई सब का एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भाई सब का जन्म कानपुर के पास यूपी के एक छोटे से गांव में आध्यात्मिक परिवार में हुआ। 1972 में आप ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर माउंट आबू में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने सिंधी भाषा सीखकर 1976 से हिंदी मुरली टाइप करने की सेवा शुरू की। बाबा की मुरली में धारणा का मुख्य सार, वरदान और स्लोगन्स आदि की सेटिंग भाई साहब ही शुरू से करते हैं। आपको अव्यक्त बाबा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। बाबा के सम्मुख मुरली श्रवण के साथ साथ आप टाइप करके शीघ्र ही विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने में आपका विशेष योगदान रहा है। सतत ज्ञान अध्ययन और राज्यों की गहन अनुभूति करने के फलस्वरूप आप अपनी क्लासेस से प्रवचनों से अनेक आत्माओं को लाभ दे रहे हैं। राज्योग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, उसमें हमारे कृषि एवं ग्राम विकास जो हमारा विंग है उसके आप चेयरपर्सन हैं। शाश्वत योगी खेती योजना और राज ऋषि गोकुल ग्राम प्रकल्प जैसी सेवाओं के लिए भी आप सबके सामने प्रेरणा स्रोत हैं। राष्ट्रीय स्तर के अनेक अभियानों का कुशल संचालन भी आप कर रहे हैं। मुख्यालय के पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांति वन के फोटो कॉपी विभाग, स्टेशनरी आदि का कार्य भी आपकी ही देखरेख में चलता है। प्रति मास निकलने वाला पत्र पुष्प जो हम सब सेंटर्स पर भी सुन रहे होते हैं, भाई सब के द्वारा ही प्रकाशित होता है। दादी जी की तरफ से पत्र व्यवहार भी आप ही करते हैं। आपके द्वारा किया गया टॉक शो अनमोल रतन, प्रतिदिन अनमोल रतन पीस ऑफ माइंड चैनल्स पर प्रसारित प्रतिदिन किया जाता है। आपने विश्व के पांचों खंडों में अमेरिका, रशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के विभिन्न कंट्रीज में भी भ्रमण किया है। इंटरनेशनल महासम्मेलनों को संबोधित किया और रेडियो टेलीविजन इंटरव्यू के द्वारा बाबा की सेवाओं को गति आपने प्रदान की है। और लास्ट में मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। ज्ञान जिनका आभूषण है, विनम्रता जिनकी शान है, सेवा जिसका कर्म है और ईश्वर की पहचान है, जिनकी दृष्टि में हर एक आत्मा ज्योति समान है, जिनसे प्रकाशित होता है जग का हर इंसान है, ऐसे हमारे आदरणीय राजू भाई सब आप अनेक गुणों से शक्तियों से संपन्न भरपूर हैं। तो आज हम आपसे आपके अनमोल रतन भी हम अपने बुद्धि रूपी झोली में इकट्ठे करेंगे। अपने मन और बुद्धि की एकाग्रता से, शांति से, आदरणीय भाई साहब।
ओम शांति। सभी पांडव भवन की योग भट्टी का अच्छा लाभ ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना? बादलों की रिमझिम के बीच खास करके जुलाई अगस्त मास में शुरू से लेकर के योग तपस्या भट्टियां चली हैं। इस पांडव भवन में मैं जब से रहा हूँ 71-72 से हर वर्ष जुलाई अगस्त मास में भट्टी होती है। विशेष ये जुलाई मास तो हमारी दीदी मनमोहिनी की स्मृति का मास है और उनका ध्यान हम सब की उन्नति पर बहुत रहता था। यहाँ कोई बैठे हैं जो दीदी से मिले हैं? सुदेश बहन है और एक, अच्छा बस दो ही प्रभा बहन है, ये तो मिली है, और कोई है? दो तीन लोगों ने देखा है। दीदी जी ने 28 जुलाई 1983 को शरीर छोड़ा था। ओम शांति भवन का उद्घाटन हुआ फरवरी में और जुलाई में आप अव्यक्त हो गए। लेकिन उनकी जो योग की तपस्या थी, जिनका बाबा से सच्चे दिल का प्यार था, उस समय बाबा साकार मूल्यों में कहते थे, माया जीते जगत जीत। मन को बच्चे थोड़ी जीता जाता है, माया को जीतो। लेकिन मन माया को जीतने नहीं देता, कई प्रकार की नई नई माया अपना रूप रंग दिखाती है। इसलिए अव्यक्त बाबा ने इसको अंडरलाइन कराया कि मन जीते जगत जीत। मन को जीत लो तो सब को जीत लोगे, क्योंकि आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति मन ही है, संकल्प शक्ति है। जैसे शरीर के अंदर इस स्थूल शरीर में हर अंग का अपना महत्व है, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सबको मिलकर के शरीर कहते हैं तन, ऐसे ही मन में भी बहुत सारी शक्तियां समाई हुई हैं। मन से एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, संकल्प शक्ति से बहुत पवित्र विचारों से एक आभा मंडल बनता है, जिस आभा मंडल से उस जिस सूक्ष्म शरीर से पहले प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि थे, संत थे, तपस्वी आत्माएं थी, वो एक स्थान पर बैठे बैठे कई स्थानों पर उनके भक्तों को, दुखी अशांत आत्माओं को अनुभव करा देती थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर एक जगह रहेगा, लेकिन वो ऐसे उनसे निकलते थे सूक्ष्म शरीर से, तो सूक्ष्म शरीर में कौन गया? मन की शक्ति, संकल्प शक्ति। तो बाबा भी हम सबको कहते हैं, बच्चे मन के ऊपर शासन करो। ब्रह्मा बाबा ने बहुत मेहनत की इसके लिए। जब बाबा के अनेक गुरु थे और गुरु लोग कहते बाबा अकेले में एकांत में बैठ के माला फेरो, जाप करो, और जब बाबा बैठते तो मन भटकता इधर उधर, एकाग्र नहीं होता। तो बाबा बहुत एकांत में बैठ के अपने मन से बात करते थे, हे मन मंत्री, हे मन मेरे वजीर, क्योंकि उस समय राजा ही चलती थी, तो राजाएं लोग अपनी दरबार लगाते थे और बाबा का जो ज्वेलरी का बिजनेस था, तो राजाओं के पास आना जाना बैठना, तो दिखते थे बाबा कि ये लोग अपनी दरबार लगाते हैं, अपने हर स्टेट के अलग अलग राजाओं को, कर्मचारियों को, मंत्रियों को बुलाते हैं और सबसे पूछते हैं कैसा सब कारोबार चल रहा है, कहाँ ठीक है, कहाँ नहीं ठीक है, क्या कंप्लेन है। तो बाबा ने भी अपनी दरबार लगाई, एकांत में बैठ करके, मैं आत्मा बादशाह हूँ, मन मेरा मुख्यमंत्री है, वजीर है, बुद्धि संस्कार आँख नाक मुख कान हाथ सबको सामने ऐसे मर्ज करके एक एक से बात करना, तो मुझे गुरु का ध्यान क्यों नहीं करने देता? तुझको क्या चाहिए? क्या तुमको तकलीफ होती है? तुमको क्यों रीस होती है? मैं भगवान को ध्यान करता हूँ, गुरु का ध्यान करता हूँ, तुम मुझे क्यों भटकाता है? और ये मेहनत ब्रह्मा बाबा ने 1932 में की थी। शिव बाबा उनके तन में 36 में आए, 36 में प्रवेशता होती है। लेकिन बाबा की हाथ की लिखी हुई जो डायरी थी 1932 की, वो एक दिन लच्छू दादी संभालती थी ना, बाबा को साथ में रहती थी, तो लच्छू दादी वो डायरी लेके मेरे ऑफिस में आ गई। राजू ये खजाना लाई, उन्होंने क्या लाए हैं? तो कहती है बाबा की 1932 की डायरी लेके आई हूँ, जिसमें बाबा ने अपने मन मंत्री से बुद्धि से आँख नाक कान से हर इंद्रिय से बातें की हैं। तो हमने कहा दादी आप टाइप करा दो, क्योंकि बाबा की राइटिंग जो सिंधी थी ना बहुत लंबे लंबे अक्षर होते थे, पढ़ना सहज नहीं था। तो फिर दादी ने मेरे को पूरी डायरी टाइप कराई, हिंदी में किया मैंने, फिर भेजा भी कईयों को। फिर अभेक बाबा ने उसको रेफर किया कि देखो बाबा ने कैसे मेहनत की, ब्रह्मा बाबा ने तपस्या के लिए योग के लिए। कभी अपने से बात करते हो? अगर मन भटकता है तो क्यों जाता है, किधर जाता है? और बाबा कहते हैं इसको मारो नहीं, इसको दबाओ नहीं, इसको दमन नहीं करो, अमन नहीं करो, इसको सुमन बनाओ, अच्छे अच्छे विचार दो, सकारात्मक चिंतन दो। कोई को भी दो प्रकार से जीता जाता है, एक लड़ाई से जीतते हैं और दूसरा प्यार से भी जीतते। कहते इसने तो मेरे दिल को जीता है। कई बार मैं जानकी दादी मेरे पत्र की हिंट देती थी कि जाओ तुम ये पत्र इसको लिखना, ये लिख देना, इस लिख देना, लिखाती ऐसे नहीं थी, डिक्टेट नहीं करते थे, लेकिन दो दो लाइन एक एक लाइन कुछ बाबा की बातें सुनाई और जाओ इस बहन को इस भाई को ये पत्र लिख देना। फिर दो तीन दिन के बाद अचानक बोलेगी कि तुमने उसको भेजा है पत्र? हाँ दादी भेजा। क्या भेजा है? टाइप किया क्या? ले आओ मेरे पास। तो जब लेके जाता था पढ़ती थी, कहती है तूने तो मेरे दिल को जीत लिया, जो मेरे दिल में था वही तूने लिखा, बहुत अच्छा, ऐसे प्रोत्साहित करने का तरीका। तो दिल को जीता कैसे? आज्ञाकारी बन के, उनकी भावनाओं को समझ करके, उनके विचारों को समझ के लिखा, तो उनको ये लगा कि इसने तो मेरे दिल को जीत लिया। तो हम सब भी अपने मन को तो जीत सकते हैं ना। मन जब कहते हैं ना तो इसके अंदर बहुत सारा, जैसे शरीर कहते हैं तो सब अंग आते हैं ना, ऐसे जब मन कहते हैं तो मन की शक्तियों में दिल भी आ जाता है। भावनाएं जिसके अंदर हैं, शुभ भावना शुभ कामना किस में है? मन के संकल्पों में ही है। वृत्तियां हैं, संस्कार है, चित्त वृत्ति कहते हैं, ये सब आत्मा के साथ मन की भिन्न भिन्न स्टेजेज हैं। जब बहुत अच्छा किसी के प्रति प्यार रहम स्नेह मर्ज होता है तो भावनाएं हमारी अच्छी भावनाएं, शुभ भावनाएं, कल्याण की भावनाएं हैं, तो संकल्प ही ना। संकल्प शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर इसको हमने समझ लिया और इसको सही दिशा में चलाया, मैं हमेशा दो बातें कहता हूँ, एक है गति, दूसरी है दिशा। गति इसकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए गीता में भगवान को अर्जुन बार बार कहता है भगवान ये मन बड़ा चंचल है, हवा से भी तेज भागता है, आप कहते हो मन मना भो और ये मन तो कंट्रोल भी नहीं रहता है, ये तो घोड़े से भी ज्यादा स्पीड है इसकी भागने की। तो भगवान ने उसको कंट्रोल करने के लिए दो विधियां बताई हैं। गीता पढ़ने वाले देखा होगा, जानते हैं उसमें दो विधियां हैं। एक कहा है कि अभ्यास नहीं छोड़ना, भले एक मिनट हो आधा मिनट हो, एकाग्र करने का अभ्यास करो। किसी एक चीज पर, नाम पर, रूप पर, गुणों पर, कर्तव्यों पर, धाम पर, कहीं पर भी बाबा के एक चिंतन करते उस पर एकाग्र को मन को, आधा मिनट होगा, एक मिनट होगा, दो मिनट होगा, बढ़ता जाएगा। अभ्यास कभी नहीं छोड़ो, थको नहीं। और दूसरा कहा है वैराग्य। जहां जहां बुद्धि योग भटकता है, जहां मन बार बार जाता है, किस लिए जाता है? दो ही चीजों के कारण जाता है। एक कहीं प्यार हो जाए, लगाव हो जाए, जिसको कहते हैं राग। कहीं राग हो गया, कहीं वैर हो गया, कहीं टकराव हो गया, कहीं प्रभाव हो गया। जहां पर भी कोई भी आत्मा अपना प्रभाव मेरे ऊपर डालती है, अपनी विशेषताओं का, अपने सहयोग का, अपने स्नेह का, किसी तरह का प्रभाव अगर किसी आत्मा का मेरे ऊपर पड़ गया, तो जब आप योग में बैठोगे तो पहले उसके विशेषताओं पर, वो बहुत अच्छा भाई है, वो बहुत अच्छी बहन है, वो इतना सहयोगी है, इतना स्नेही है, उसकी तरफ बुद्धि मन पहले जाएगा, फिर बुद्धि उसको देखेगी, अनुभव करेगी। ऐसे ही कहीं से आप झगड़ा कर लो, टकराव हो जाए, बैठो यहाँ, कहाँ कहाँ जाएगा पता नहीं, क्या इसके साथ हमारा हिसाब किताब है, ऐसे हमको तंग करता है, ऐसे परेशान करता है, बैठे बाबा को याद करने और मन अपना काम करा अंदर अंदर भटक रहा है। इसलिए मन की गति पर नियंत्रण रखने के लिए अब बाबा हम सबको कहते हैं, हर एक आत्मा की विशेषताओं को जरूर देखो, लेकिन उनकी विशेषताओं पर प्रभावित नहीं हो जाओ। क्या समझो, क्या समझो? ये प्रभु देन है, भगवान ने इनको ये विशेषता दी है, इनकी है नहीं, इनको ये विशेषता देने वाला दाता वो है जिसने इनको इतना श्रेष्ठ महान बनाया है। तो जब हम बाबा को उस नजर से देखते हैं कि बाबा ने कैसे इस आत्मा के अंदर विशेषताएं भरी, क्या क्या क्वालिटी भरी, तो दीदी दादी के अंदर एक बहुत अच्छी उस समय जो संगठन मजबूत हुआ, तैयार किया, क्योंकि बाबा के समय तो मधुबन में केवल 20-25 लोग थे और बाबा यहाँ पर किसी यंग को कोई को ऐसे रखता ही नहीं था। बूढ़ी बूढ़ी माताएं और कुछ बुजुर्ग भाई बाबा के साथ यहाँ रहते, बाकी सबको बच्चे जाओ सेवा पर, जाओ सेवा पर, कोई को रखता ही नहीं था। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा की जो भी भावनाएं थी, जो बाबा ने मुरलियों में आह्वान किया था कि बच्चे इतने बड़े बड़े हाल बनेंगे, इतने बच्चे आएंगे, हर धर्म वाले आएंगे, बहुत आबू से, आबू रोड से माउंट तक क्यों लगेगी, कभी तो बोल दिया बॉम्बे से क्यों लगेगी, ऐसे ऐसी बातें बाबा जब बोलते तो दादियों को ये विचार चलते थे, मान लो इतने सब बच्चे आएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कौन संभालेगा। तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी दादी ने सब बहनों को, दादियों को, भाइयों को इकट्ठा किया, एक बनाया, एक मत हुए और फिर उसी अनुसार इसकी वृद्धि की, विस्तार हुआ, हम लोगों को समर्पित होने का चांस मिला। आते गए, परखती गई, रखती गई और उनकी विशेषताओं को देख करके उस सेवा दे दी। देखा विशेषताएं, प्रभावित नहीं हुई विशेषताओं से, लेकिन ये आत्मा सेवा कर रही है किस भाव से कर रही है, कितनी लगन से कर रही है, एक एक पर नजर रख करके, उनकी विशेषताओं को देख करके उसी प्रकार से सेवा उसको दे दी। इसके कारण जब सब सेवाओं का इतना बड़ा संगठन बना तो देखो अलग अलग स्थान के लोग हैं, कोई कर्नाटक का है, कोई तमिलनाडु का, कोई पंजाब का, कोई गुजरात का, कोई महाराष्ट्र का, बहुत वैरायटी गुलदस्ता मधुबन में समर्पित किया। अभी तो 1,500-2,000 भाई समर्पित हैं, बहने हैं कुछ, इतने बड़े सारे यज्ञ की 3-4 जगह बहुत बड़ी कारोबार भाई संभाल रहे हैं। लेकिन हर एक की विशेषता अपनी, एक की विशेषता दूसरे की विशेषता से नहीं मिलती, और लेकिन बड़ों ने जो परखा और परख करके उनको विशेषता के अनुसार सेवा दी तो सेवाएं निर्विघ्न चली। जबरदस्ती नहीं किया कि ये तेरे को ही करना है, नहीं, उसकी विशेषता अगर है तो वो सेवा में सफल हो जाएगा। प्रभावित नहीं हुई किसी से, लेकिन विशेषता को देखी, अगर कमी है, कमजोरी है, तो उसके लिए बहुत प्यार से उसको निकालने का तरीका क्या अपनाया। किसी की अगर कमी कमजोरी है तो उसको निकालने का तरीका क्या है, कैसे निकाला, शिव बाबा की, बाबा की अव्यक्त वाणी आप सब सुनते हो। बाबा अगर कोई बच्चे को कोई शिक्षाएं देता है, कोई कमी देख करके मुरली चलती है, वाणी चलती है, तो बाबा पहले उसकी बहुत बड़ी विशेषताएं वर्णन करता है। बच्चा ऐसा है, बच्चा ऐसा है, ये है, ये है, कह के फिर इशारे में कहता है ये छोटी सी बात है, इसको चेंज कर लो, ये ठीक नहीं, ये सोपता नहीं है। तो दीदी दादी ने भी हम लोगों को कमियों पर ध्यान खिंचवाया, लेकिन तुम तो इतनी महान आत्मा हो, तुम्हारे लिए थोड़ी सोपता है, तुम तो इतने बड़े हो, इतनी अच्छी सेवाएं कर रहे हो, ये छोटी सी बात को चेंज कर लो। तो उसको चेंज करने में ये नहीं लगा कि मेरी कमियों पर हमारा ध्यान खिंचवाया जाता है, बार बार हमको कहा जाता है, तो लगा ठीक है, दादी हमारी शुभचिंतक है। और उन्होंने चेंज करने की एक और विधि बताई कि अगर कोई को अपने कमजोर संस्कार लगता है ये संस्कार मेरा नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण जीवन में, योगी जीवन में यही विघ्न है, यही रुकावट है, तो उसके लिए दीदियों ने हमें सिखाया, दादियों ने, कि तुम अकेले में बैठकर अपने आप से बातें करो, अपने को पढ़ाओ। अपने को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है अपने से बातें करना, अपने से अपना टीचर बन करके अपने को सिखाना, समझाना कि बाबा ने इतने सारे विश्व में से हमें क्यों चुना है, हमारे पर नजर क्यों डाली है। बहुत सारे लोग थे, अच्छे अच्छे भक्त हैं, अच्छे दानी हैं, महापुरुष हैं, उन सब में से हमें ही सेलेक्ट किया, तो जरूर हमारी कोई बहुत बड़ी विशेषता होगी जिसको भगवान ने देखा। तो उसने अपना बनाया है, जब हम उस नजर से अपने को देखते हैं कि हम कौन हैं, किसकी नजरों में हैं, तो अगर हमारा कोई ऐसा संस्कार है भी, छोटे छोटे संस्कार हैं, बड़े संस्कारों को तो हम जीत लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे हैं वो दुश्मन के रूप में अंदर अंदर छिपे रहते हैं। ईर्ष्या का है, नफरत का है, घृणा का है, अहम बहम का है, कई प्रकार की जलसी होती है आपस में। बाबा कहता है सबसे बड़ा जो आपका दुश्मन है ना, वो ईगो है, अहम भाव है। कोई थोड़ा सा विशेष होता है ना, मैं ये विशेष हूँ, मैंने ये सेवा की, मेरे अंदर ये विशेष, उसको अपना अहम भाव आता है, ईगो आता है, और अगर उसको जरा भी सम्मान नहीं मिला। आज हमारे क्लास में सवेरे भट्टी चले ना, हमारे बड़े भाइयों के नीचे, तो उसमें जयंती दीदी क्लास कराते कराते बोलती हैं कि सुनहरी टोली से बाबा ने हम लोगों को बचाया। फिर बताती सुनहरी टोली क्या थी, उसको विस्तार किया थोड़ा। शुरू शुरू में ब्रह्मा बाबा में जब शिव बाबा आ रहे हैं ना, तो ब्रह्मा बाबा को पता नहीं चलता क्या हो रहा है, क्योंकि बाबा कब प्रवेश करके कब किसी को दृष्टि दे देता है। ब्रह्मा बाबा का शरीर गुम हो जाता है, वहां श्री कृष्ण दिखाई देता है, लोग बाबा को ऐसे पकड़ लेते, तो बाबा को इस समय में हो क्या रहा है, कौन करा रहा है, क्या हो रहा है। तो बाबा ने अपना परिचय देने के लिए एक संदेशी को चुना, संदेशी में प्रवेश किया अल्माइटी ने, शिव बाबा ने। और प्रवेश करने के बाद ये ब्रह्मा है, ये सरस्वती है, ये प्लानी है, ऐसे सबको अलग अलग बाबा ने, अल्माइटी ने टाइटल दिए, बताया मैं निराकार हूँ, मैं अल्माइटी हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, मैं नई दुनिया की स्थापना के लिए आया हूँ। पूरा ही पहचान जो शिव बाबा ने अपनी दी ना, बिल्कुल अब वो छोटी छोटी 14 साल 15 साल 13 साल की बेटियां बच्चियां पवित्र कुमारियों के द्वारा दी। लेकिन जब उनके द्वारा दी तो बाबा उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट रखता था कि अल्माइटी इनके अंदर आता है। बाबा उनके लिए 36 प्रकार का भोजन बनवाता था, और हर बार जब अल्माइटी आना होता तो संदेश भेजता कि आज बाबा आएंगे अलग से। तो बाबा उसके लिए जब बाबा आते थे तो स्पेशल नई ड्रेस बनवाता था हर बार पहनने के लिए, उसका नाम था पुष्पमणि, खास करके अल्माइटी की उनके द्वारा प्रवेशता होती थी। पीयू, पीयू नाम से उसको हम कहते हैं, पीयू आते हैं, पीयू। ब्रह्मा बाबा को पिया कहते थे, उनको पीयू कहते थे। तो वो जब उसमें आने लगे, कई बार आए, बाबा को डायरेक्शन देने, बताने कि ये कौन है, ये कौन है, अब मैं कौन हूँ, अपना परिचय देने। तो थोड़े दिन के बाद जो हमारी बड़ी थी ना कमेटी दादियों की, बड़ी दादियाँ जैसे मम्मा थी, बाबा थे, ब्रजिंद्रा दादी थी, दीदी मनमोहिनी थी, दादी प्रकाश, में इनका एक अलग ग्रुप था बड़ा जो सारे यज्ञ को संभाल रहा था। तो ये लोग आपस में मीटिंग करते थे, बैठते थे, तो उसको ये लगता था कि मेरे में अलमाइटी आता है, मेरे को अपने साथ क्यों नहीं बिठाते हैं। थोड़ा थोड़ा ईगो आना शुरू हुआ उनको, लेकिन उसके ग्रुप में कैसे बिठाएंगे, वो तो बड़ों का ग्रुप है, और ये तो छोटे छोटे बच्चियां हैं। बाबा उनके द्वारा पाठ बजा रहा, संदेश दे रहा, वो अलग बात था। लेकिन थोड़े ग्रुप बना करके उन्होंने एक पार्टी बना ली, जिसको दीदी ने कहा सुनहरी टोली। टोली माना संगठन बना लिया, टोली खाने वाली नहीं, एक ग्रुप बना लिया, सुनहरा ग्रुप। और वो 5-6 बहनों का ग्रुप बन गया कि हम लोगों की क्या वैल्यू यहाँ, अंदर अंदर हम तो इतना सब करते हैं, हमारे अंदर तो अलमाइटी आता है। तो जब डिस्टर्ब होने लगे अंदर अंदर, बताएं कुछ नहीं, किसका मोबाइल बज रहा है, बंद करो। तो एक दिन उनको अंदर अंदर ग्रुप बना के, 5 बहनें अपना ग्रुप बना करके अचानक यज्ञ से भाग गई, और भाग गई तो भागने के बाद शादी भी की होगी, दुनिया में चली गई। तो 5 गई, उसमें जानकी दादी की बहन भी थी एक। तो 2010 में जानकी दादी कराची गई थी, सेवा शुरू हुई थी वहां। तो जयंती दीदी बता रही थी कि जब हम गए तो जिस कुंज भवन में सब हुआ था, तो जानकी दादी कहती मुझे वहां चलना है, मुझे देखना है। तो वो सारा स्थान जो है अभी स्कूल है वहां, तो वो देखा। देखने के बाद दादी वहां खड़ी हो गई, जहां से कूदे थे, भाग के गए थे। तो आज जानकी दादी, जयंती दीदी उसका वर्णन कर रही थी कि देखो संगठन में कितनी सेवाएं की, कितने अच्छे अच्छे रहे। बाबा कहता है बाबा को भी गाइड किया, बाबा को भी उनको श्रीमत दी। लेकिन अहम भाव ऐसी चीज है, कभी भी मैंपन आ गया, मैं बड़ी हूं, मैं बड़ा हूं, मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरे अनुभव अच्छे हैं, तो माया उनको छोड़ती नहीं है। इसलिए सब बहुत ध्यान देना कि कभी भी कोई भी विशेष कार्य बाबा हमसे कराए, हरेक की बुद्धि अपनी है, हरेक की विशेषताएं अपनी है, हरेक की कला अपनी है, कोई भी अच्छे से अच्छा कार्य कराए। तो बाबा भी ये स्मृति हमको बार बार दिला रहे हैं, करण करावन हार बाबा करा रहा है। उसने हमें करण हार बनाया है, करावन हार खुद है। तो आज इतनी सेवाओं का विस्तार हो रहा है बाबा के अव्यक्त पाठ के बाद। पहले साकारी पालना मिली, फिर अव्यक्ति पालना मिली, और अभी तो निराकारी रूप से ही सबको पालना मिल रही है। और इस पाठ के अंदर इतने हजारों बाबा के बच्चे निकल रहे हैं, लास्ट आते भी फास्ट जा रहे हैं, निश्चय बुद्धि बन रहे हैं। ऐसे समय पर हम बाबा की प्रभु लीला को समझें। कराएगा तो बच्चों से ही, लेकिन बच्चे कहीं आए इस अहम में आ जाए मैं कर रहा हूं, मैंने किया, तो वो अहम भाव जो ईगो है वो कभी भी इस जीवन में उन्नति करने नहीं देगा। इसलिए बहुत ध्यान देना, कितना भी अच्छा कार्य करे बाबा शुक्रिया दे रहा करा लिया, नहीं तो मैं का जो अहम भाव है उसके कारण क्या होता है। अगर मान लो मुझे कोई ने रिस्पेक्ट नहीं दिया, कोई ने मेरी बात सुनी नहीं, मानी नहीं, तो हम समझते हैं यहाँ मेरा क्या मान है, यहाँ मेरी क्या इज्जत है, मैं तो इतना सब धन दिया, इतना अच्छा मकान बना के दिया, इतनी सेवाएं की, इतना सब मैं इनको आगे बढ़ाया, मेरा कोई पूछता नहीं है। फिर ये जो मन है ना क्या करेगा, अंदर अंदर बहुत उछलेगा। भले ऊपर नहीं बोलो, नहीं दिखाओ, लेकिन शांत नहीं रह सकते, योग नहीं लगेगा। जब बैठेंगे वही विचार चलते रहेंगे, वही चिंतन चलता रहेगा। इसलिए हम सबको वर्तमान समय मन पर राज्य करना, मन को अपने नियंत्रण में रखना, उसके लिए सबसे अच्छा साधन है अमृत वेले उठते ही बाबा का कोई समान, जो बाबा ने अपने बच्चों को समान स्मृति में दिलाए, आप कौन हो अपने आप को पहचानो, और उस सम्मान को स्मृति में ला करके उसमें रह करके अपने सम्मान में रहो, सबको सम्मान दो, मांगो नहीं। कई चीजें ऐसी हैं जो मांगने से नहीं मिलती, कोई से स्नेह मांगो तो देगा, सम्मान मांगो देगा। बाबा कहता है अच्छी विधि यही है, तुम दूसरों को दो, अपनी तरफ दो, दे न दे अपने आप उसको आएगा। ये इतना प्यार से बोलता है, ये इतना हमको सम्मान देता है, हम तो इसको सदा ही ऐसे करते हैं। एक न एक दिन ज्ञानी तो आत्मा तो रियलाइज करेगी, इसलिए हम सम्मान देने में थके नहीं, अपनी तरफ से सम्मान दो, स्नेह दो, जो कह रहे हैं कर दो, अपने आप धीरे धीरे वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो मन को शांत रखने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए, मन पर जीत पाने के लिए पहले ऊंचे स्वमान में रहने का अभ्यास करो। मैं परमात्म संतान, विजयी आत्मा, कल्प कल्प की विजयी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, भगवान की चुन्नी हुई उनकी राइट हैंड भुजा हूँ, शिव शक्ति हूँ, बहुत सारे स्वमान हैं। एक बार मुझे दादी ने ऐसे होमवर्क देती थी ना, काम बता देती थी, कहती राजू रोज नया स्वमान मुरली के अंदर लिखो। दादी कितने लिखे, कहती जितने निकाल सकते हो निकालो। तो मैंने पहली बार 365 समान निकाले कि भाई एक एक दिन साल भर चलता रहने आ। फिर दूसरे भाइयों ने भी मीटिंग करके अनेक समान ABCD से निकालना शुरू कर दिया। अव्यक्त बाबा में की मुरलियों में जो याद प्यार आती ना, 3-4 लाइन मुरली के बाद में, उस 3-4 लाइन के अंदर 5-7-8 समान आपको मिल जाएंगे पूरी मुरली से। और वो समान अगर स्मृति में हम रखते हैं, ये कोई ऐसे नहीं कह दिया है बाबा ने हो, लेकिन ये बाबा के टाइटल जो हैं, उस टाइटल की स्मृति को अपने अंदर लेने के लिए उसका समान बना लो। मास्टर ज्ञान सागर हूँ, मास्टर प्रेम सागर हूँ, मास्टर सुख सागर हूँ। बाबा उनका सागर है, लेकिन हम बच्चों को उसने अपना भी हेड बनाया, मास्टर बनाया। तो जब हम अपने स्वचिंतन में रहते हैं, अपने स्वमान में रहते हैं, तो अच्छे विचार कितने चलेंगे। व्यर्थ विचारों की तो क्यों होती है, लंबी होती है, टू मच उनकी गति होती है, लेकिन जब अच्छे विचार हैं तो उनकी सीमा सीमित हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएंगे। तो बाबा ने हम सबको जो वरदान दिए हैं, आज हम इतनी मुरली में वरदान, स्लोगन, अव्यक्त इशारे, इतना होमवर्क रोज पढ़ते हैं। बाबा की संधि की मुरली में कितने अच्छे अच्छे होमवर्क आ जाते हैं। अगर उनका हम चिंतन करते हैं, उसका हम अभ्यास करते हैं, तो मन बिजी रहे। इसको फ्री छोड़ोगे तो कुछ न कुछ खुराफात करेगा, चंचल तो है ही। इसलिए इसको कहीं ना कहीं पढ़ाई में, सेवाओं में, अच्छे चिंतन में, लिखने में, पढ़ने में बिजी करो। दादियों ने हम लोगों को शुरू शुरू में, छोटे छोटे आए ना 15 साल 16 साल के, खूब बिजी किया, जरा भी फ्री नहीं, एक मिनट भी नहीं फ्री रखा। कर्मणा सेवाएं भी थी, कर्मणा सेवाएं भी खूब कराई, लेकिन अगर हम ऐसे थोड़ा फ्री हुए तो जाओ म्यूजियम में 2-4 पार्टी समझा के आओ। रोज पैदल यहाँ से म्यूजियम जाते थे हम लोग, और वहां शाम को 3-4 पार्टी समझा के फिर वापस आते थे। अच्छा चिंतन जब दूसरों के आगे हम वर्णन करते हैं ना, थोड़े दिन पहले एक मुरली बाबा की आई थी, मन को 4 विधियों में विजी करो, तो मैंने क्लास में 5 लिया था। हमने कहा पहला है मनन, जो भी बात है मन के अंदर उसको उगाड़ना। जैसे एक बार बाबा के यहाँ गौशाला थी, तो गौशाला में चक्कर लगाते एक बच्चा शिव कुमार था साथ में, बाबा ने कहा बच्चे ये गाय बीमार है। तो वो बाबा आप गाय के भी डॉक्टर हो क्या? तो बाबा ने आकर के क्लास में कहा बच्चे जो गाय बैठी हो, मुंह न चला रही, उगाड़ नहीं रही हो, मानो बीमार है, कुछ ना कुछ तकलीफ है उसको। ब्राह्मण जीवन में भी अगर ज्ञान सुना है, उसको उगारा नहीं, चिंतन नहीं किया, मानो बीमार है। इसलिए हम ज्ञान चिंतन करें। गऊ जैसे भोजन खा करके बैठ के आराम से उगारी लेती है, ऐसे ऐसे मुचलाती है, उसको हजम करती है। तो हम जो सुन रहे हैं उसको मनन करें, चिंतन करें। तो दीदियों ने हमें क्या आदत डाली शुरू शुरू में, मुरली सुन लिया, हाँ जी जाओ आधा घंटा नक्की लेक पर चक्कर लगाओ, अकेले लगाना, दो लोग नहीं जाना, बातें नहीं करना, पूरा नकेले कराउंड लगा के आओ और फिर उस मुरली पर जो चिंतन किया उसको जा करके लिखो। देख के मुरली नहीं लिखो, जो आपका अच्छा चिंतन चला है वो लिखो जाके। डायरी बनाई हम लोगों ने, अपने चिंतन धारा को चेंज कराया बाबा ने, दादियों ने हमें, कि ऐसे चेंज करो इसको, और आदत बन गई। आज किसी टॉपिक पर भी क्लास हो, भाषण हो, कुछ भी कर, इतना बाबा ने ज्ञान रत्नों से बुद्धि को भरा है और कोई चिंतन चला ही नहीं। बाबा की मुरली का चिंतन किया, वरदान का चिंतन किया, कोई अच्छी पॉइंट मिली उसका चिंतन किया और फिर मनन ही, इसको हम कहते हैं मनन किया। और जब मनन कर लिया तो उसका वर्णन होता है, कहीं ना कहीं सुनाते हैं दूसरों को, जो अच्छा चिंतन चल रहा है, भाई आज बड़ी अच्छी बाबा ने बात कही, वर्णन करो। और वर्णन करने के साथ साथ जो बाबा से प्राप्ति हुई है उसके आधार से आत्मा और परमात्मा का मिलन, मनन वर्णन मिलन, और बाबा से बहुत मीठी मीठी मिलन में बातें करो। जैसे मिलते हैं ना हम आपस में, जब क्या करते हैं, दो जने अगर आपस में मिल गए, दोस्त नजदीक वाले, हाव हार करके क्या हो, कैसे हो, क्या चल रहा है, बातें करने लगेंगे तो कई बार तो इतना प्यार में स्नेह में बैठ जाएंगे जो घंटों बीत जाएगा। अब बाबा से प्यार से बातें तो करो, बाबा आपने कैसे हमें चुना, कहाँ से ढूंढा, कैसे अपनी पालना दी, कैसे हमारे भिखारी पतित जीवन को स्वच्छ बनाया, पावन बनाया, अपनी गोद बिठाया, पढ़ाया, नॉलेजफुल बनाया, त्रिकालदर्शी बनाया, क्या नहीं बाबा ने दिया। तो दिल ही दिल में बाबा के प्रति शुक्रिया करो, मिलन बनाओ, बाबा से बहुत प्यार से बातें करो, बाबा का भी स्नेह अनुभव करो। और मिलन के बाद है लगन। जब बाबा से प्यार जुड़ जाता ना, लगन, तो आत्मा और लगन में मगन हो जाती है, वो मगन स्थिति योग कहलाती है। मनन हो रहा है, वर्णन भी हो रहा है, मिलन भी हो रहा है, फिर लगन लग गई बाबा से और आत्मा लगन में ऐसी खो गई जो मगन हो गई। अब तक आत्माएं अगर मगन नहीं होती हैं तो उनके संस्कार शुद्ध पवित्र नहीं बनते। मनन करते रहो, आप मुरली सुनो, सुनाओ, बहुत अच्छा योग करो, कराओ, लेकिन कितना समय मैं आत्मा उस स्थिति में मगन रहती हूं और लगन कितनी है बाबा से, क्या बाबा आपने हमें दिया है। लगन माना जिगरी प्यार, दिल का प्यार। और जब दिल का प्यार है तो बस प्यार में तो समा जाते हैं, खो जाते हैं, तो वो लगन मगन कर देती है। और मगन स्थिति हमारे संस्कारों में बहुत स्वच्छता ले आती, शुद्ध कर देती, पवित्र कर देती है। तो संस्कारों की शुद्धि का आधार भी मन है, वृत्तियों को परिवर्तन करने का भी आधार मन ही है। वृत्तियां बने कैसे, कैसे बनी वृत्तियां, वृत्तियों से वाइब्रेशन बना, बातचीत से वातावरण बना। लेकिन वृत्तियां जो बनी वो कैसे बनी, जो बात, जो संकल्प बार बार रिवाइज किए हमने, रिपीट किए, वृत्ताकार, ऐसे करते हैं, ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, एक बार स्टॉप कर लिया, अरे छोड़ो, फिर वही चलना शुरू, रिपीट होता गया। और जो बात बार बार रिपीट किया, 10 बार रिपीट कर ली, तो हमारा एक एटीट्यूड बन गया, दृष्टिकोण बन गया, वृत्ति बन गई कि व्यक्ति आएंगे ऐसे, अंदर चली गई बात, जब सामने आएंगे, जब उनकी बात उठेगी, कोई बात आएगी, ये व्यक्ति ऐसे। अब वो वृत्तियों ने वाइब्रेशन बना दिए, हमारे लिए वही सब नजर आता है, ये सब हमारे लिए ऐसे ही है, ये सब ऐसे ही करेंगे। इसलिए बहुत ध्यान देना, ये आत्मा की मन की शक्तियों का ही छाया वृत्ति है। मन के संकल्पों से जब हम प्रैक्टिकल कर्म में आए तो संस्कार बन गए। संकल्प पहले उठे, ऐसे थोड़ी कर्म कर लिया, बीज तो संकल्प ही है, बीज पौधा बना, वृक्ष बना, फल बना, उसका कारण बीज है। बीज को अगर सुधार लिया हम सबने, माना मन पर ध्यान दिया, मन पर कंट्रोल रखा, तो वृक्ष भी अच्छा होगा, उसका फल भी अच्छा होगा, संस्कार भी शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहला जो ध्यान बाबा ने खिंचाया, ये गीत हमारा बना, चिंतन की धारा को बदल लो जीवन बदल जाएगा। चिंतन की धारा, क्या चिंतन करता हूं मैं, क्या सोचता हूं सारा दिन। कोई कहे मैं कुछ नहीं सोचता हूं, एक दिन की बात मैं सुनाता हूं। इसी आंगन में मैं यहां बैठा था, जगदीश भाई हमारे बहुत बुद्धिमान थे, सुना होगा, कहते थे 7 फुट लंबी बुद्धि, बहुत चिंतन था उनका, बहुत अच्छा अच्छा चिंतन करके सारा साहित्य लिखा देते थे, ऐसे लेटे लेटे, पढ़ते नहीं थे, ऐसे लिखा देते थे पूरी किताब। तो यहां मैं आंगन में बैठा था ऐसे शांत होकर के, और जगदीश भाई यहां पैदल कर रहे थे, गेट तक जाते थे, यहां बाबा कमरे तक आते थे, तो अचानक मेरे सामने खड़े हो गए, और खड़े हो के रीड कर लेते थे ना क्या कर रहा है, तो मैंने बोले क्या सोच रहा है, बहुत नजदीक आके पूरे क्या सोच रहा है, तो मेरे मुख से निकला भाई साहब कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब ये कुछ नहीं शब्द पर उन्होंने 10-15 मिनट वहीं खड़े खड़े क्लास करा दिया मेरे को। कहते ऐसा कभी होता है, ये ब्रेन अगर ठीक है, आत्मा इसके अंदर ठीक है, सोचती नहीं, ऐसा होता है क्या कभी। हो सकता है ये किसी का शून्य हो गया हो तो न सोच चलता हो। अरे सारा कल्प संकल्प चलते हैं, वो तो रुकते ही नहीं है, और निर्संकल्प समाधि होती नहीं है। इसलिए ये नहीं बोलो हमने हम कुछ नहीं सोच रहे थे, लेकिन क्या सोच रहे थे उस पर ध्यान नहीं था, वो बोलो कुछ तो सोच रहे थे। अभी हर एक बाबा के बच्चे को ये ध्यान देना है, हम योग में बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, क्लास सुनते हैं, ये संकल्प क्या सोच रहा है, क्या जा रहा है, किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, केवल देखने की आदत डाल दो, कंट्रोल में आ जाएगा। जरूरत नहीं, हम बैठे हैं उन्नति के लिए आए हैं, भट्टी करने आए हैं, ये हमारा नमाज शाम का समय है, भगवान से हमें बातें करनी है, शक्ति लेनी है, और इस समय तुम भटक रहा है, क्यों भटक रहा है भाई, क्या चाहिए तेरे को, मुझे बाबा से मिल लेने दे, बात कर लो, कंट्रोल में आ जाएगा। तो मन पर नियंत्रण करने के लिए 3-4 बातें आपके ध्यान पर। एक है, कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। हम लोगों का ध्यान इस बात पर बहुत दादियों ने खिंचवाया, पहले आते कहते संग की परहेज करना, संग की परहेज यहां भी करनी है, भाई बाहर का संग खराब है। कहते अरे यहां जो मुरली नहीं सुनता है, पर चिंतन करता है, जिसका अपनी उन्नति पर ध्यान नहीं है, अगर उसका तुम संग करेगा तो तुमको उसका रंग लग जाएगा, कमजोर का संग करेगा अपना रंग लगाएगा, संग से संभल। हम सब इस बात पर अंडरलाइन करें कि ऐसे लोगों के साथ नहीं उठना बैठना है जो पर चिंतन करता हो, मुरली के बारे में, यज्ञ के बारे में, बड़ों के बारे में व्यर्थ सोचता हो, व्यर्थ बोलता हो, ऐसे हैं वैसे हैं, ये करते हैं वो करते हैं। बाबा कहता तेरे को उसके बारे में सुना सुना करके तुम्हारा दृष्टिकोण बदल देगा। इसलिए बहुत ध्यान देना, संग की बहुत अच्छी परहेज करो, तब मन संपूर्ण अपने कंट्रोल में रहेगा। दूसरा है, जो हम कुछ पढ़ते हैं देखते हैं, और आजकल जो हमारे पास सोशल मीडिया ने दिया ना हाथ में खिलौना मोबाइल, अगर किसी की आदत बन गई तो उसको देख करके वो बार बार उस पर बुद्धि लगा रहा है, कभी भी मन उसका एकाग्र नहीं हो सकता, कंट्रोल में नहीं आ सकता, जीत क्या प्राप्त करेगा। इसलिए ध्यान देना, इसके लिए बहुत परहेज करो, दृढ़ता से संकल्प को कंट्रोल करो, जो देखना है अच्छी चीजें देखो, मना थोड़ी है, कोई आपके उन्नति की बातें क्लास कोई सुनते हो, कोई ऐसी चीज सुनते हो, लेकिन सुनते सुनते कहां पर चले जाते हो तो देखो, उस पर तो कंट्रोल करो। तो अगर हमारा साहित्य अध्ययन श्रव्य या दृश्य, देखना या सुनना या पढ़ना, ये सब बातें मन को बहुत प्रभावित करती हैं। तीसरा है अन्न, जो हम भोजन कर रहे हैं आज, इसके ऊपर कितना ध्यान बाबा खिंचवाता है, बच्चे इधर उधर नहीं खाओ, बाहर वालों का नहीं खाओ। एक बार मैं ट्रेन में आ रहा था तो मेरे साथ 4-5 डॉक्टर बैठे थे, नए नए विद्यार्थी थे, 1-1.5 साल के, तो एक ही कैबिन में बैठे थे, दिल्ली से इधर आ रहे थे, तो मेरे पास तो भोजन था, तो मैंने निकाला, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लो आप लोग भी। नहीं नहीं भाई जी आप खाओ, मैं जैन फूड खा लूंगी। जैन फूड मैं तो सुना नहीं था कभी। मैं जैन फूड क्या होता है? तो बोलते हैं ट्रेन में आजकल जैन फूड मिलता है। खाते हो कोई आप लोग जैन फूड? जैन फूड सुना ही नहीं है किरण भाई? नहीं सुना? लहसुन प्याज नहीं होता, क्योंकि जैनी लोग नीचे का कंद मूल नहीं खाते, लहसुन प्याज उसमें नहीं होता। और ब्राह्मण आत्माएं जो कच्चे होते हैं ना, लहसुन प्याज नहीं खाना ना, हमने बनाता कौन है, उसके विचार कैसे हैं, उसकी शुद्धता कैसी है। अगर हम योगी हैं तो मन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, जो हमारा अन्न है, वो हमारे मन को सबसे पहले प्रभावित करता है। अगर किसी क्रोधी के हाथ का आप खा रहे हैं, कोई झगड़ालू है, कोई लड़ाई करके आया, आपका भोजन बना रहा है, आप खा रहे हैं उसको, कभी भी आपका योग नहीं लगेगा, मन आपका शांत नहीं होगा। उसके विचारों का जो प्रभाव भोग के अंदर, भोजन के अंदर गया, उसके विकारी संकल्प, उसके क्रोधी संकल्प, उसके लोभ लालच वाले पैसे स्वार्थ के संकल्प, अगर भोजन बनाने वाले की वृत्तियां उस समय उस तरह की चल रही हैं और आप वो भोजन खा रहे हैं, इसलिए बाबा ने परहेज बताई, बच्चे अपने हाथ से बना के खाओ, जो भोजन आ रहा है सामने उसको भोग लगा के खाओ, बहुत प्यार से शुद्ध करके खाओ, आपके मन को ठीक रखेगा, नहीं तो मन कंट्रोल में नहीं आएगा। मन जीत बनने के लिए थोड़ी परहेज जरूरी है, और वो परहेज जिसने की, अच्छा चिंतन किया, अच्छा संग किया, अच्छे सम्मान में रहा, तो मैं समझता हूँ ये जो व्यर्थ की कंप्लेन है, बाबा को कितनी मूलियां चलानी पड़ रही। अभी नवंबर दिसंबर तक जो व्यर्थ मूलियां आएगी ना, सब में बाबा ने अंडरलाइन कराई है, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय को बचाओ, इसको नहीं करो व्यर्थ, ये बहुत अमूल्य खजाने हैं दोनों। पिछले 10-12 दिन, एक महीने पहले एक मूल्य चलाई ना बाबा ने, कहा 15 दिन के लिए, एक महीने के लिए आप लोग संकल्प करो, हम संकल्प व्यर्थ नहीं करेंगे। संकल्पों को व्यर्थ करने का क्या तरीका, कैसे व्यर्थ हो रहा है? जहां पर मेरा कोई काम नहीं, ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये कब हुआ, ये किसने किया। दादी हमारी गुलजार दादी जब क्लास कराते थे कहती थी, ये काका की भाषा जो कौवे वाली बोलते हैं ना, ये व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति करते, कब क्यों कहाँ कब कैसे किसने, कई प्रश्न लगा देते हैं और प्रश्नों में उलझ जाते हैं, व्यर्थ की क्यों लग जाते। फुल स्टॉप लगाना सीखो, जो ड्रामा में चल रहा है सब अच्छा है, फुल स्टॉप। चिंतन धारा को चेंज करने का सबसे अच्छा ब्रेक ड्रामा, नथिंग न्यू, फुल स्टॉप। ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा ने अपने बच्चों को इतना अच्छा ये ज्ञान दिया है, किसी ने अच्छी तरह से इसको समझ लिया कि इस नाटक के अंदर, इस ड्रामा के अंदर मुझ आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। मैं बाबा का बच्चा, कल्याणकारी बाप, कल्याणकारी समय, कल्याणकारी ड्रामा, और हम उसके बच्चे कल्याण के निमित्त हैं, इसलिए जो भी सीन आई उसमें कल्याण का रास्ता छिपा हुआ है, भले वर्तमान में दिखाई दे इसमें क्या कल्याण है, लेकिन अगर उसकी गहराई में जाओगे, बाबा कहता अच्छा लगता है कोई कल्याण नहीं, लेकिन वो सीन ने आपको अनुभवी तो बनाया, ये तो कल्याण हो गया कि आगे के लिए धोखा खाने से आप बच जाओगे, क्योंकि अनुभव आपकी अथॉरिटी बन गया। बार बार अनुभवी थोड़ी धोखा खाता है, एक बार हो गया, आप कहेंगे कल्याण हो गया, बाबा कहता है कल्याण सोचो नहीं, उसमें ये कल्याण है कि आप आगे के लिए सेफ हो जाएंगे, अनुभवी बन गए, अनुभव एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। इसलिए अपने संकल्प की गति को कंट्रोल में रखने के लिए दो चीजों पर बहुत ध्यान देना, एक हर आत्मा के पार्ट को साक्षी दृष्टा बन करके देखो, अपने भी इस पार्ट को देखो, कभी कभी न चाहते भी ऐसे संकल्प उठते हैं, संस्कार इमर्ज होते हैं। हम ज्ञानी आत्माएं हैं, हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, योग लगा रहे हैं, फिर भी कोई छिपा हुआ संस्कार बाहर आता है, उसको साक्षी होकर के देखो, ये क्यों आया, कहां से आया, क्या इसका बीज रहा, देखो तो कम से कम आ क्यों रहा है। कोई चीज ऐसी देख ली, कोई ऐसी बात पढ़ ली, कोई ने ऐसी बात सुना दी, कोई पिछला संस्कार छिपा हुआ जागृत हो गया, डिस्टर्ब नहीं हो जाओ, क्यों आ गया, कहाँ से आ गया, हम तो इतना मेहनत करते, इतना पुरुषार्थ करते, आया है कोई बात, अनुभवी बना के जाएगा। साक्षी होकर के अपने गति, संकल्पों की गति पर ध्यान दो, बोल पर ध्यान दो, जो मैं बोल रहा हूं इससे क्या परिणाम निकलेगा, बोल दिया और फिर पश्चाताप करें, नहीं बोलना चाहिए था, निकल गया, हो गया। लेकिन अगर आपने बोल दिया और उसके दिल को दर्द पहुंच गया तो उसकी जो आह है वो आपको शांत रहने नहीं देगी। देखना, आपने बोल दिया बिना सोचे समझे कुछ कह दिया और उसको लग गई बात, उसके अंदर से कैसे मेरे लिए सोचते हैं, क्या मेरे लिए करते हैं, जो उसके दर्द की, दिल की आह है, वो हमें योग लगाने नहीं देती, शांत रहने नहीं देती। इसलिए बाबा कहता है बच्चे दुआएं लो, दुआएं लो, सबकी दुआएं लो, अपने आप दुआ दो, दुआ लो, आपका मन शांत हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। तो एक अभ्यास करना, अपने और अपने साथियों के, अपने बड़ों के हर पार्ट को साक्षी दृष्टा होकर देखना, अलग से पार्टधारी ये अपना बहुत अच्छा पार्ट बजा रहा है, इसके नेगेटिव पार्ट में भी कुछ न कुछ किसी के मनोरंजन का साधन है। अगर आज नाटक के अंदर, ड्रामा के अंदर, फिल्म के अंदर कोई विलियन का ही पार्ट ना हो, रामायण में अगर रावण का ही पार्ट ना हो, तो रामायणिक सुनने वाले देखने वाले को मजा नहीं आएगा, उसके पार्ट में उसके नवीनता है। इसलिए हमारे संगठन में भी अगर कोई ऐसा है, एक दो कहीं कहीं होते हैं संगठन में, सेंटर्स पर भी ऐसे आ जाते हैं जो बहनों को शांत बैठने नहीं देते, दिमाग खाते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, बाबा की तो कोई बात नहीं, बच्चे आपकी परीक्षा ले रहा है, आपको और अनुभवी, मजबूत, परिपक्व बना रहा है, डरो नहीं, परिपक्व बन जाओ। तो साक्षी होकर के अपने साथियों के, अपने साथ सेवाधारियों के, अपने बड़ों के, अपने हर संगठन के व्यक्ति के पार्ट को देखो, आप बहुत अच्छी तरह से अलग होकर के देखेंगे तो दुख की फीलिंग नहीं आएगी, क्यों, क्या मैं नहीं जाएंगे, क्या ये पार्ट है, कुछ हिसाब किताब मेरे हैं पिछले जन्मों के, चुप तो हो रहे हैं, कर्जा उतर रहा है। तो साक्षी होकर के देखेंगे तो मन को शांत कर सकते हैं। और दूसरा, कोई भी दृश्य देख करके, क्यों, क्या, कैसे, में न जाके, बाबा ने कहा बच्चे बिंदी लगाना सीखो, फुल स्टॉप। जिसने ड्रामा की बिंदी को यथार्थ लगा दिया, उसके संकल्प कंट्रोल में आ सकते हैं। तो मन जीत बनने की ये जो विधियां हैं बाबा की बताई, परहेज है, विधियां हैं, और जिसने इस पर जीत प्राप्त कर ली, बैठो एक सेकेंड में बाबा के पास चले जाओगे। इंद्रिय जीत हो गए, मन जीत बनने से इन इंद्रियों पर हमारी जीत हो गई। कोई नहीं कह सकता ये फलानी इंद्री चंचल है, तंग कर रही है, परेशान कर रही है। नहीं तो वर्तमान समय मन और कर्म इंद्रियों की इतनी गहरी दोस्ती है, संकल्प उठता है इंद्रियों में उत्तेजना आती है, चंचल होते हैं। अगर मन पर हमारा शासन है तो इंद्रियां भी शीतल शांत हो जाएंगी, उत्तेजनाएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए सब ध्यान देना, वर्तमान समय अगर हमने मन जीत स्थिति बना ली, कंट्रोल कर लिया, बहुत प्यार से करो, अच्छे अच्छे विचार करके प्यार करो, अरे तुम चल, कितना अच्छा साधन है, अभी मुझे मूल वतन ले चल, अभी मुझे सूक्ष्म वतन ले चल, अभी मुझे मधुवन की सैर करा ला, वाहन है ना, इसको भक्ति में कहते हैं अंतः मन वाहन, अंतःवाहक शरीर। क्या है अंतःवाहक शरीर? मन अपने सूक्ष्म संकल्पों के द्वारा एक लाइट के शरीर का निर्माण करता है, वो अंतःवाहक शरीर है संकल्प ही, और वो संकल्प यहाँ बैठे बैठे कहाँ से कहाँ ले जाता है, बैठे यहाँ लंदन अमेरिका भी घूम के आ सकते हैं, बैठे यहाँ है मूल वतन सूक्ष्म वतन में भी जा सकते हैं, लेकिन लगाम हाथ में चाहिए, नहीं तो बाबा ने उसमें कहा शक्तियों की लगाम चाहिए। पहले श्रीमत की लगाम तो कहता था, इस बार की मुरली में शक्तियों की लगाम लगाओ। शक्तियाँ कहीं सहन करना पड़ता है, कहीं समाना पड़ता है, कहीं सामना करना पड़ता है, और सबसे बड़ी शक्ति वर्तमान समय परखने की शक्ति चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं धोखा मिलेगा। कौन सा व्यक्ति किस भावना से हमारे पास आ रहा है, ठगी के लिए तो नहीं आ रहा है, कोर्स करने आ रहा है, ज्ञान सुन रहे हैं, आ रहा है बड़े प्यार से। उसके अंदर के भाव क्या है, उसकी भावनाएं क्या है, उसकी दृष्टि वृत्ति कैसी है, आप अगर कैच नहीं कर पाए, परख नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं धोखा मिलेगा। फिर आपके संकल्प क्या, बहुत ज्यादा आपका वेस्टेज जाएगा। ध्यान देना, परखने की शक्ति को बढ़ाओ, और परखने की शक्ति बढ़ती है जितना आप शांत रहो, साइलेंस में चले जाओ, मन को स्वच्छ और शांत बना लो। सामने वाले को आप ऐसे परख लेंगे, इसके क्या भाव हैं, इसके क्या विचार हैं, किस भाव से यहाँ आ रहा है। कई ठग ऐसे आते हैं सेंटर्स पर, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ये भोले बच्चे हैं, इनको इतना सारा दुनिया का ज्ञान नहीं है। धीरे धीरे रहते रहते जान लेते हैं, परख लेते हैं एक दूसरे को, ये पैसे वाले हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये भावना वाले हैं। एक दो साल ज्ञान में चल करके फिर धीरे धीरे कहेंगे हम एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा सहयोग दो, हम बाबा के कार्य में ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। 10-20-50 लोगों को बहुत परख करके पहले परखते हैं, और फिर उनसे पैसा थोड़ा थोड़ा ले करके, और यही लालच देते हैं कि हम बाबा की ये सेवा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा कोई प्रोजेक्ट लेके आएंगे, और जब इकट्ठा हो जाता है पैसा तो लेके फुर्र हो जाते हैं। और फिर कहते हैं बहन जी हमको ये ठग के चला गया, ये कहाँ चला गया भाई, और बहन जी को कुछ पता ही नहीं है, अंदर अंदर करके चला गया। क्या करेंगे, सावधान, ऐसे से बहुत सावधान रहना। वर्तमान समय माया के भी सूक्ष्म रूप को बहुत परखना, वो भगवान बन करके आ रही है, बाबा बन के भी आ रही है, आवाज भी बदल के आ रही है। इसलिए बाबा के पार्ट को समझना और उसको पहचान करके उनकी शक्तियों को लेना, नहीं तो भटकने में देर नहीं लगती, प्रभावित हो जाते फटाफट, अच्छे अच्छे लोग भटक जाते। इसलिए व्यक्ति को माया को, उसके सूक्ष्म रूपों को, उनके वार को परख करके चलो, और परख लेंगे तो विजयी हो जाएंगे। निर्णय करो और पास हो जाओ। तो बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे अभी मन जीत बने, जगत जीत बने, इस समय अपनी इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर ले, फिर विश्व तो इनके हाथ में आने वाला ही है। क्योंकि मन मना भाव होना बड़ा सहज है, अगर मन हमारे कंट्रोल में है ना, एक सेकंड लगता है शांत होकर के उड़ो इस साकार वतन से, कभी अव्यक्त वतन, कभी मूल वतन, देख के तो आओ बाबा क्या कर रहा। कभी कभी मैं ऐसे बैठता हूँ ना, मैं बोला इतने साल हो गए बाबा आपको अव्यक्त हुए, 58 साल हो गए, क्या व्यक्त वतन में बैठ के कर रहे हो, इतनी दादियां गई हैं, सबको बोलते हो मैं इमर्ज करता हूँ, सबसे सकास दिलाता हूँ, कैसे बिठाया है, कहाँ बैठी है, चलो व्यक्त वतन में देख के तो आओ, कम से कम अनुभव तो करो व्यक्त वतन का, बाबा से पूछो तो बाबा आप क्या कर रहे हो इतने दिन से यहाँ बैठ करके, कितनी सेवाएं वतन से बैठ के बाबा कर रहा है। अव्यक्त रूप में पालना दी, इतने बच्चों को जन्म दिया, चलो तो 2017 में पूरा कर दिया। अब 2017 से 26 आ गया, 9 साल हो गए, कोई पार्ट नहीं चलाया अपना, लेकिन निराकारी रूप से जिस बच्चे से भी बाबा को कराना करा रहा है, अनुभव करा रहा है, और उसके कारण आप देखेंगे 2017 तक 9 लाख ब्राह्मण बच्चे बने थे लगभग, और आज 14 लाख से भी अधिक परिवार है। कहां से आ गया, ये बाबा की बहुत गुप्त मशीनरी है। हम सहयोगी बने और देखें बाबा के इस गुप्त पार्ट को, कितने नए नए बच्चे आके ऐसा प्रोत्साहित कर रहे हैं। कभी कभी मैं कहता हूं न दादियों को देखा है, न मुरली के बारे में उनको कुछ पता है, मुरली क्या है, कैसे चली, कौन सा आकार मुरली, क्या अव्यक्त मुरली, कुछ नहीं पता है, लेकिन बाबा बाबा तन मन धन समय संकल्प सब सफल कर रहे हैं। तो भाग भाग फास्ट नहीं जाएंगे क्या, पुरानों से आगे चले जाएंगे। इसलिए अलबेलापन, हमने देखा पुराने लोग क्लास में नहीं आते, कहते हम तो ऑनलाइन सुन लेते हैं, और नए नए भाग भाग करके क्लास में आ रहे हैं, तो क्या होगा, यही तो एक माया है, उनको पीछे कर रही है और आने वालों को आगे कर रही है। इसलिए देखना, ध्यान देना, ऐसे नहीं पीछे आने वाले हमसे आगे चले जाएं। हम सबको अपनी दिनचर्या पर, अपने नियमों पर, अपनी मर्यादाओं पर, जो हमारी बाउंड्री बनी हुई है ब्राह्मण जीवन की, उसमें रह करके रेस करो, रीस नहीं करना, रीस करो। और जिसने मन पर शासन कर लिया, मन मना भाव कहते हैं, मन मना, पहले मन को मना, मना तो लो उसको, फिर मन मना भाव सहज हो जाओगे। ठीक है, तो अभी हम सब आधा घंटा योग करेंगे, फिर मुझे जरूरी काम है दो तीन और, यहाँ 7:30 तक फिर शायद शशि दीदी आएंगे, सौगात है ना, हो गया हो गया, तो 7:30 बजे तक मैं आपके साथ हूँ। सभी भ्रकुटी आसन पर बैठो, देखो मन आपका कहना मानता है कि नहीं। दस दस मिनट के लिए मैं 3 अभ्यास बता देता हूं। बाबा की 3 महिमा है। एक बाबा को कहते हैं सागर, ज्ञान सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर। सागर की तुलना इसलिए की है, उसके पास अथाह है, बेहद है। दूसरा कहते हैं सूर्य, और तीसरा कहते हैं सीड, बीज, वृक्षपति, पूरे कल्प वृक्ष का बीज। तो हम सभी सागर की लहरों में लहराना अलग है, लेकिन जो डुबकी लगाना जानते हैं, अंदर चले जाते हैं, उनको बहुत रतन मिलते हैं, बहुत शीतलता का अनुभव होता है। तो सबसे पहले हम उस शीतलता का, उस सच्ची शांति का, उस प्यार का, उस सागर की गहराई का अनुभव करेंगे। एकदम डीप चले जाओ, कहते डीप साइलेंस। एक डीप साइलेंस है, दूसरी स्वीट साइलेंस है, तीसरी डेड साइलेंस है। साकार वतन में डीप साइलेंस का अनुभव करो, सूक्ष्म वतन में स्वीट साइलेंस का अनुभव करो, मूल वतन में डेड साइलेंस का अनुभव करो। तो अभी यही 3 ड्रिल हम करेंगे। तो सभी अपने भ्रकुटी आसन पर अपने चमकते हुए सितारे को कैसे बाबा जी हम आत्माओं को सत्य ज्ञान देकर सत्य स्वरूप की पहचान दी, और अपने सत्य स्वरूप में जब हम स्थित होते हैं कि मैं एक लाइट हूँ, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप, मेरा बाबा इन सब गुणों का सागर है। सब डीप साइलेंस, शीतलता का अनुभव करो। Thank you.